तपसा दग्ध किल्बिषया कृतसंकल्प वैषम्यं अनृतं विबुधेष्वं यं ब्रह्मविदो तपसा दग्ध किल्बिषया वैषम्यं वैषम्यं शब्दार्थ ऐसे हैं श्लोकों का। युमं तुम सभी ब्रह्मविद परम सत्य से भली भांति परिचित युक्ता संयमित तपसा तपस्या के द्वारा दग्ध किल्बिषयां जिनके सारे भौतिक कल्मस जल चुके हैं कुतः तब कैसे संकल्प वैषम्यम संकल्प में त्रुटि अनुरुतम झूठा बाधा झूठा कथन विभुदेशु देवताओं के समाज में इव अथवा ट्रांसलेशन एंड परपड़ी डिवाइन गुरुश्री प्रभुपाद जी के द्वारा श्री प्रभुपाद की ट्रांसलेशन। तुम सभी संयमित संतुलित तथा परम सत्य से परिचित हो। तुम सबने अपनी तपस्याओं के द्वारा सारे भौतिक कल्मस से अपने को पूरी तरह स्वच्छ कर लिया है। तुम सबके वचन देवताओं के वचनों की ही तरह कभी मिथ्या नहीं होते। तो फिर यह कैसे संभव हुआ कि तुम सबका संकल्प विफल हो गया। तात्पर्य वैदिक ग्रंथों से ये पता चलता है कि देवताओं द्वारा दिया गया वरदान या साप कभी झूठा नहीं होता। यज्ञ करने इंद्रियां तथा मन को संयमित करने एवं परम सत्य विषय के पूर्ण ज्ञान प्राप्त करने से मनुष्य का सारा भौतिक कल्मस जाता रहता है। तब उसके वचन तथा आशीर्वाद देवताओं की ही तरह कभी विफल नहीं होते। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्निमित्तं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदामयं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथनितं तं सजीवम् साधयितं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सगण ललिता विशाखानितंश्च हे कृष्णकरुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत श्रीराधा कांत नमस्तुते दत्तकांचन गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। तो यहाँ पर जो प्रसंग है तो एक साधुओं के चरित्र के ऊपर संदेह और ये विषय के ऊपर कहा जाता है। जब यज्ञ हो रहा था बड़े बड़े लोगों के द्वारा, तो यज्ञ का जो अभीष्ट फल अंतिम में रूप नहीं लिया, तो इसमें निराश होकर के जो यज्ञ करता है तो उनके हृदय में बड़े ही संदेह उत्पन्न होती है यहाँ पर, और अपने हृदय की जो संशय है वो सारे साधु समाज के सामने रखते हैं और कहते हैं आप लोग संयमी हो, आपके इंद्रियों के ऊपर बहुत बड़ा काबू है और मन को जीते हो, और आप लोगों का मन हमेशा भगवान में है, और इस प्रकार के स्थिति में आपके द्वारा जो भी कार्य किया जाता है तो फिर वो हाँ विफल नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर उसका प्रमाण हाँ तो ये हो रहा है कि यज्ञ का अभीष्ट सिद्धि जो फल जो प्राप्त होना चाहिए था वो मुझे प्राप्त नहीं हुआ, तो ये बड़े ही खेद के विषय है। अपने खेद को दिखाते हुए वो साधुओं के चरित्र के ऊपर एक थोड़ा सा संदेह अपन उनके मन में बैठ जाता है। ये जो काला दाग है श्री राधा गिरिधरी भगवान की, जय जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी की, श्री गौनिताय की, श्रील प्रभुपाद की, तो ये जो एक बहुत बड़ा मतलब दाग है तो ये विषय यहाँ पर प्रकट हो रही है। साधु का जीवन एक स्पष्ट है, शुद्ध है, एक लेकिन स्पष्ट जीवन के ऊपर थोड़ा सा भी छिटका लग जाए, काला दाग पड़ जाए, वो बहुत दूर से उनका चमकता हुआ दिखता है। ऐसे अनेक है शुद्ध बातें हैं उनमें, लेकिन थोड़ा सा कोई दाग उनके ऊपर आ जाता है तो वो लोग समाज में चर्चित हो जाता है, चर्चा के विषय बन जाता है, तो ये बात यहाँ पर दिख पड़ता है। तो आप लोग का ऐसा कैसे हुआ, तो ये बात को कहते हैं यंग तुम सभी ब्रह्मविद हो। और ये सही बात है, जब साधु के मुख से निकली हुई शब्द वाणी जब विफल हो जाता है तो जन समाज को बहुत बड़ा धक्का लगता है। और यही बात को भी क्योंकि जीवों के भीतर भी विषय वासना इतना गहरा उनका विस्तार हुआ है, इसलिए अद्वैत आचार्य ने कहा प्रभु मेरे से होता नहीं है, आप आ जाइए। तो इसलिए यहाँ पर कहा जाता है यूं ब्रह्मविदो, ये कहते हैं कि आप लोग सब ब्रह्मविद हो, ब्रह्म को जानते हो। ये मनुष्य का बड़े ही मनुष्य जीवन प्राप्त होने के बाद मनुष्य का बड़ा ही उत्तरदायित्व है कि ब्रह्म साक्षात्कार के लिए प्रयास करें, ब्रह्म जिज्ञासा के लिए अपने जीवन को उसमें लगाएं। ब्रह्मविदो प्रथम शब्द आया है इसमें, ब्रह्मविदो ब्रह्म को मनुष्य जीवन में ब्रह्म जिज्ञासा करना चाहिए। इसलिए ऋषभदेव जी अपने पुत्रों को कहते हैं पराभव तावत आवत अवभूत जात यावत न जिज्ञासत आत्मतत्वम। हे मेरे पुत्रों, इस संसार के क्षणिक नश्वर चीज़ों में मति मत रखो, संसार के क्षणिक सुख में रुचि न दिखाओ। पराभव जब तक एक व्यक्ति इस संसार में आने के बाद वो आत्मा के विषय में, यही बात को भी हमारे आचार्यों ने चैतन्य महाप्रभु के सामने कहा के आमी जारे के ने तापत्रय, यहीं से जीवन की खोज होती है, जीवन की जो एक जीवन का जिज्ञासा होती है मैं कौन हूँ, ये बात भी आचार्यों ने कहा है। और यही बात को भी ऋषभदेव जी भी अपने पुत्रों को कहा है तब तक ये संकीर्ण में पड़ा रहेंगे तब तक हमारा बहुत बड़ा पराभव पराभव होते रहेगा। जब तक आत्मतत्व न जिज्ञासत आत्मतत्व न जिज्ञासा नहीं कर आत्मा के तत्व के आत्मतत्व के विषय में जब तक हमें जिज्ञासा नहीं करते हैं, ये बहुत बड़ा गलती हो जाएगा मनुष्य जीवन प्राप्त का बहुत बड़ा होने के बाद। यदि ये चीज़ हमें प्रायश ये चीज़ों में हमें रुचि नहीं कर दिखाते हैं तो बहुत बड़ा गलती हो जाएगी। ये बात को अथ देह क्षेत्र सुताप्त भीतर जनस्य मोहयं अहम एमति इसमें शिकार होके और कर्मचक्र बंधन में पतित होकर के वो कहते हैं कर्मचक्र बंधन में पतित होकर हमारा जो प्रकृत लक्ष्य है वो लक्ष्य से हमें विच्युत हो जाते हैं। इसलिए कहा जाता है मनुष्य जीवन का जो प्राप्त हुआ है वो तप दिव्यं पुत्र का जैन सत्व ब्रह्म सौख्य हे मेरे पुत्र इसमें से मोह मोड़ लो और जो अनंत सुख है तपस्या ब्रह्म दिव्य तपस्या के लिए शरीर को लगाओ। तपो दिव्यं पुत्र का हे मेरे पुत्र तप दिव्य तपस्या के लिए ही ये शरीर है, ये शरीर इसीलिए है मिला है। और प्रभुपाद जी ने भी भगवद गीता में बताया है कि हाँ ये जो मनुष्य जीवन मिला है खास करके केवल एक ही चीज़ के लिए, वो चीज़ है आत्मसाक्षात्कार सेल्फ रियलाइजेशन के लिए ही ये मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है और कुछ के लिए नहीं और कुछ नहीं। और ये बात को भी प्रभुपाद जी जोर दे के बताते हैं। तो यहाँ पर कहते हैं कि ब्रह्म सौख्यम तो आनंद और क्योंकि ये मनुष्य जीवन अनेक जनी के बाद में प्राप्त होती है लब्धा सुदुर्लभ इदं बहुसंभावन्ते मनुष्य मर्त दमन दपि अधीर। ये बात अवधूत जदुराजन भी अपने उपाख्यान में बताते हैं कि अनेक अनेक जनी होकर जब एक व्यक्ति मनुष्य जीवन प्राप्त लब्धा अब मिल गया है बहुत बड़ा क्या चीज है ना सुदुर्लभ, ये मनुष्य जीवन सुदुर्लभ है दुर्लभ है। जो चीज ब्रह्मा शिव को भी प्राप्त नहीं होता इसलिए उन्होंने भगवान को प्रार्थना किए थे, इसलिए उन्होंने ब्रह्महरिदास बने और अद्वैत आचार्य सदाशिव बने चैतन्य महाप्रभु के अवतार में। तो इसलिए यहाँ पर कहा जाता है लब्ध्वा हमें जो वस्तु प्राप्त हुआ है लब्ध्वा सुदुर्लभ बहुत संभव अनेक अनेक जीवन हो करके जब ये जीवन प्राप्त होता है मनुष्य शरीर तो इसमें श्रेय वस्तु की प्राप्त करने के लिए मनुष्य को प्रयत्न करना चाहिए। तो यहाँ पर प्रथम शब्द है ब्रह्मविदो, मनुष्य जीवन का सबसे पहले कर्तव्य है अपने को जानना ब्रह्म जिज्ञासा करना युक्ता। और क्या करना ब्रह्म को तभी हमें जानेंगे, जिज्ञासा तभी हमारे भीतर होगी जब हमें संयम एक संयम पूर्वक जीवन की बिताएंगे संयमता हमारा जीवन में लाएंगे। अपूर्यमाणम अचल प्रतिष्ठम समुद्रम आप प्रभिसंजत्व तद्वत कामजंग प्रभिसं संतम आपनोति नो काम कामी। भगवान भी बात को कहते हैं भले एक भक्त ये बहुत ही संसार में अनेक काम में उलझे हुए हैं अनेक काम वासनाएं उनको सताते हैं फिर भी भगवान कहते हैं मेरे भक्तों का लक्षण कैसे होते हैं ना अपूर्यमाणम अचल प्रतिष्ठम समुद्रम आप प्रभिसं तद्वत कामजंग प्रभिसं संतम आपनोति नो काम कामी। अर्जुन कहते हैं ये अर्जुन बरसात के समय अनेक नदियों की जल समुद्र के भीतर प्रवेश करती है किंतु समुद्र ज्यों की त्यों ही बनी रहती है वो अपने मर्यादा लंघन नहीं करती है। ठीक उसी प्रकार एक वैष्णव एक भक्त अपने जो मर्यादा है भक्ति के जो मर्यादा है वो पार नहीं वो मर्यादा को लंघन नहीं करता भले ये कामुक जगत में है लेकिन वो भूल नहीं जाता ये चीज को। इसीलिए ब्रह्म जिज्ञासा करने के पहले बाद में बताते हैं ब्रह्म जिज्ञासा करना है तो अपने को एक संयम पूर्वक जीवन बिताना होगा। एक भक्त के तपस्वी का जीवन कैसे है ये बात को यहाँ पर और उसके बाद कहते हैं तपस्या। कभी कभी हमें भक्ति करते समय हमें ऐसे मन में ठानते हैं हम विचार लेते हैं मन में नहीं बहुत हो गया तन आ चुका हूँ और नहीं बस अभी मुझे खाली भक्ति करना है और कुछ नहीं करना है बस इस प्रकार का हमें बड़े ही संकल्प लेते हैं मन को मजबूत बनाते हैं। फिर जैसे ही हमें विषय के संसर्ग में आते हैं जैसे हमें विषय के सामने आ जाते हैं, हमारा तपस्या पंडुर हो जाता है, हमारा विषय, हमें विषय में चले जाते हैं। मैं शायद एक बार बताया था ये बात को, देवामृत प्रभु बताते हैं कि वो कह रहे, सॉरी ये भक्ति रसामृत स्वामी महाराज वो बताते हैं। तो एक कुत्ता को लेकर आप सिंहासन में बैठा दो और उनके सर में एक सोने का मुकुट पहना दो और बहुत दामी क्या बोलते हैं ये जो पहनते हैं मटका स्लिक लेक पीताम्बर पहना दो और दोनों लेफ्ट डाई में दो लोग खड़े होकर उनको चामर हिलाते रहें। हाँ, कुत्ता इस प्रकार सिंहासन में आदर सम्मान लेते हुए बैठा है राजा बन करके, लेकिन राजा कुत्ता जी के सामने उस ठीक उसी समय राजा कुत्ता जी के सामने ला करके के हड्डी को हिलाओ। जैसे ही हड्डी को हिलाओगे वो भूल जाएगा मैं राजा हूँ और तुरंत सिंहासन से मारेगा कुदी और तुरंत अपने दांत में हड्डी को पकड़ लेगा। ठीक उसी प्रकार हम तो मन में बहुत विचार करते हैं, नहीं मुझे भक्ति करना है, लेकिन जैसे विषय के सामने आते हैं हम एक कुत्ते की जैसे हो जाते हैं। हम भूल जाते हैं हमें एक ब्रह्मचारी है, ब्रह्मचारी का पहला कर्तव्य है तपस्या, ब्रह्मचारी का पहला काम है तपस्या करना, या हमें तपस्या को भूल जाते हैं, इस संसार के सुख में अपने को लगा देते हैं। जैसे ही कुत्ता भूल गया, मैं कुत्ता नहीं हूँ, मैं एक राजा हूँ, मुझे हाड़ी नहीं खाना चाहिए, उसी प्रकार हमें जानते हैं ये तपस्वी जीवन को हमें अपनाएं, फिर भी जैसे संसार के थोड़ा सा हमारे मन की विपरीत होता है कि मन की चाहत कुछ नहीं मिलता है तो हमें हमने खुद को हमें संयम नहीं कर पाते ये। और कमलोचन प्रभु एक बार बता रहे थे तो वो साउथ में गए थे कोई एक मंदिर में गए तो वहाँ पे एक साउथ के तो बड़े ही कट्टर होते हैं, ये करना बहुत कुछ करना है करते हैं। लेकिन वो बता रहे थे प्रभु जी को, बताते बोले हम सब तो करते हैं, सब तो मानते हैं, सब ये करते हैं, लेकिन वी आर ड्रिंकिंग वन कप ए कप ऑफ ट्री हम सब करते हैं लेकिन एक कप चाय पीते हैं। सब हम एक पालन करते हैं लेकिन एक कप चाय पीते हैं ऐसे, तो ये तपस्या नहीं है। तो हमारे देखते हैं यहाँ पर जो यूंग ब्रह्मविद युक्त तपसा और ये बात को भी भक्ति सिद्धांत स्वामी महाराज जब गौड़ीय मठ का प्रचार कर रहे थे तो उस समय अपने एक शिष्य को वो भेजे प्रचार के लिए पाश्चात्य देशों में। जब वो जाके पहुँचे तो वहाँ पर देखे कि सब ये तपस्या के प्रभुपाद जी ने जो तपस्या के जो अंग दिया है नो मेडिटेटिंग, नो गैम्बलिंग, नो इंटॉक्सिकेशन, नो इल्यूशियस सेक्स, ये चार पूरा प्रचुर प्रबल जोर से हो रही है यहाँ पर। तो फिर भी अरे प्रचार कर रहे थे तो अचानक एक व्यक्ति आया, धनी व्यक्ति आया तो उनको बताएं भक्ति सिद्धांत स्वामी महाराज के उस शिष्य उनको बताएं कि आपको ये तपस्वी जीवन को समझना है, कुछ जानना है तो आपको एक चीज चार चीज करना पड़ेगा, नो मेडिटेटिंग, नो गैम्बलिंग, नो इंटॉक्सिकेशन, नो इल्यूशियस सेक्स, ये चार चीज आपको करना पड़ेगा। तो तुरंत वो धनी व्यक्ति जो थे भक्ति सिद्धांत स्वामी महाराज के शिष्य को वो कहने लगे वो महात्मा जी सब कुछ करेंगे लेकिन वो नहीं होगा कि हम सब कर पाएंगे लेकिन ये सब चीज़ हमें नहीं छोड़ पाएंगे। मीटिटिंग मांस खाए बिना कोई जीवन है क्या? मांस नहीं खाएंगे तो ये आप लोग आए हो क्या हमारा देश को बीमार बनाने के लिए? ऐसे प्रभुपाद जी को भी सुनना पड़ता था। तो आप मांस नहीं खाते हो, खाने के लिए मना कर रहे हो, दारू पीने के लिए मना करते हो तो हम तो रुग्ण हो जाएंगे। तो ये जीवन नहीं है। जो मांस नहीं खाता, स्त्रियों के कई स्त्रियों के साथ भ्रमण नहीं घूमता और दारू नहीं पीता ये मनुष्य नहीं है। ये आज के समाज में यही बड़े ही बातें होती है, जिनके पास ये चीज़ है, जो वो चीज़ करता है तो समाज के सामने उनका जानते हैं, उनको बहुत बड़ा ये है। तो यही बात को भी सुनना पड़ा था भक्ति सिद्धांत स्वामी महाराज के जो शिष्य थे उनको। लेकिन वही बात को करने के लिए जब भक्ति सिद्धांत स्वामी प्रभुपाद जी को बताएं, तो प्रभुपाद जी जब गए प्रभुपाद जी जब गए तो वही बात को वो लोगों के सामने रखें पहले, तो और वो तो सफल नहीं हो पाए अपने देश को, भारत आ गए, भक्ति सिद्धांत स्वामी महाराज जो पहले उनके शिष्यों को भेजे थे वो हुए नहीं, काम नहीं कर पाए, तो वापस आ गए। और वो आने के बाद फिर प्रभुपाद जी गए थे, तो प्रभुपाद जी गए तो प्रभुपाद जी वही बात को रखें, बड़े ही रखें, यदि आप तपस्वी जीवन को चाहते हो तो ये चीज़ों को आपको करना पड़ेगा। हाँ, तो प्रभुपाद जी को वो समय वो लोग ऐसे कह नहीं पाए कि हमें ये नहीं कर पाएंगे, वो स्वामी जी हमें ये नहीं कर पाएंगे, कि एक साधु का प्योरिटी जी फॉर जो साधु का जो शुद्धता का जो एक आकर्षण है, ये आकर्षण के सामने सारे विदेशियों जो कि बड़े ही साधारण था ये चीज़ करना, तो ये प्रभुपाद जी के जो शुद्धता है वो इसमें वो आकर्षित हुए। आप लोग सुने होंगे जब रघुनाथ दास गोस्वामी के पिताजी कुछ केस के मामले में फरार हो गए थे, और मुस्लिम जो अथॉरिटी थे तो रघुनाथ दास गोस्वामी को ले गए और हाजत में भर दिए, और वो समय छोटे से बालक रघुनाथ दास गोस्वामी का जो शुद्धता, उनके शरीर का जो तेज है, उनके जो सरलता है, वैष्णवी मतलब सरलता, सिंपलिसिटी, तो यही गुण को जब देखें मुस्लिम जो अथॉरिटी जो शासक थे, जो यही शुद्धता के जो कुछ लक्षण को रघुनाथ दास गोस्वामी में देखें तो अपने को संभाल नहीं पाए, और तुरंत हाजत से रघुनाथ दास गोस्वामी को मुक्त कराए। और रघुनाथ दास गोस्वामी वहीं पर अपने कृष्ण भक्ति का जो चतुराई है, इस चतुराई के द्वारा वो किस प्रकार उनके हृदय को जीतते हैं और वहाँ से वो मुक्त होते हैं, ये बात एक साधु के शुद्धता का परिचय है, ये बात को भी। और भक्ति सिद्धांत स्वामी जब न सॉरी भक्ति प्रभुपाद जी जब इस प्रकार का प्रचार कर रहे थे वो समय, तो अचानक ऐसे ही प्रचार कर रहे थे, एक व्यक्ति आए आके बोले कि प्रभुपाद हमारे साथ जो एक भक्त रहते हैं तो उनको भूत सताता है। तो प्रभुपाद जी बोले ठीक है, यदि वो व्यक्ति चाहे तो उनको हमें भूत से छुटकारा दिला सकते हैं। प्रभुपाद जी को एक व्यक्ति आके बोला कि प्रभुपाद हमारे साथ और एक व्यक्ति रह रहे हैं तो उनको भूत सता रहा है। तो प्रभुपाद जी क्या बोले कि वे यदि वो चाहे तो मैं उनको भूत से छुटकारा दिला सकता हूँ। हाँ, तो आप जाओ उनके घर के सामने जो कृष्ण अर्पित कुछ जल छिटका दो और ये संकीर्तन करो, शंख ध्वनि के साथ संकीर्तन करो। तो भक्त लोग गए प्रभुपाद जी का कहने से, भक्त लोग गए और जा करके उनके घर के सामने संकीर्तन किए, और आधा घंटा संकीर्तन करके भक्त लोग अपने अपने जगह में आ गए। तो दूसरे दिन प्रभुपाद उनके वो व्यक्ति के घर होकर के निकल रहे थे, जब घर होकर निकल रहे थे वो समय प्रभुपाद जी ने वो व्यक्ति को पूछा कि भूत कैसे हैं। तो व्यक्ति को पूछे प्रभुपाद भूत कैसे हैं, तो प्रभुपाद जी बोले न सॉरी, वो व्यक्ति बोला प्रभुपाद अभी तो भूत की कोई खबर ही नहीं है, पहले जो हमारे घर में भूत समय सता रहा था लेकिन ये संकीर्तन के बाद तो अभी तो भूत का कोई खबर ही नहीं, वहाँ पे कोई तो भूत नहीं है। तो प्रभुपाद जी यहाँ पर कहने लगे कि जब मैं भारत में दवाई का व्यवसाय कर रहा था और रात के समय मकान के ऊपर मैं जब जाता था तो मुझे मेरे सामने भूत आते थे, जब जैसे ही भूत आते थे तो मैं हरे कृष्ण मंत्र जप करता था और भूत भाग जाता था। तो आपके देश में बहुत सारे भूत है तो ये भूत को भगाने के लिए तो आप लोग हरे कृष्ण मंत्र जप करो, ये कलिजुग का तपस्या है, कलिजुग का तपस्या हरे कृष्ण मंत्र जप करना और चार नियम को पालन करना, यही प्रभुपाद जी तपस्या के रूप में हमें दिए हैं। और प्रभुपाद जी ये भी जो अपने घर आ जाओ और रास्ता बताने के लिए जीवन की शुरुआत के समय वो बहुत बड़े एक संदेश देना चाहते थे, कैसे अपने घर में आओ, एक घर का एड्रेस एक कागज में लिख के दे रहे थे, वही एड्रेस को वो बैक टू गढ़ेट जो मासिक पत्रिका है भगवद्धाम आ जाओ, अपने घर कैसे आओ उनका खबर प्रभुपाद जी लोगों को देने के लिए उस समय बहुत बड़ा मेहनत करते थे। और प्रभुपाद जी खुद ही जाते थे कागज खरीदते थे, उनको फोल्ड करते थे, खुद ही लिखते थे, उनको प्रिंटिंग करते थे और स्टेपलिंग भी करते थे, हाँ, और खुद भी बैग में भरते थे, खुद सूप टू सूप जाते थे, हाँ, कभी कभी प्रभुपाद जी खाते नहीं थे, भूखे रहते थे। और ऐसे वो दिल्ली के इतने कड़ी सूर्यताप में, वो अकेले इतने बड़ी उम्र में, हाँ, वो ऐसे घूमते घूमते बैक टू गडेट मैगजीन को डिस्ट्रीब्यूट करते थे। अब कभी कभी डिस्ट्रीब्यूट करते करते कड़ी ताप सहन न कर पा के कभी कभी गिर भी जाते थे। ऐसे इस प्रकार का तपस्यामय जीवन को प्रभुपाद जी ने जो उठाया, ये तपस्वी जीवन को देख करके जो दुकान से कागज खरीदते थे, वो कागज के दुकान मालिक जो था, उन्होंने कहने लगा, ये इतने बड़ी उम्र में जो आप ये सब कर रहे हो, आपको मिल रहा है क्या? तो ये प्रभुपाद जी के जो तपस्या के विषय में यहाँ पर आज कहा जाता है, तो हमें ये बात को हमें देखना है। और जब वृंदावन में सनातन गोस्वामी पाद जी ने रह रहे थे, तो उस समय और सनातन गोस्वामी के जीवन में बहुत बड़ा संकल्प था, क्योंकि आज के श्लोक के विषय में ज़्यादा तैयारी नहीं किया, ये दयामूर्ति प्रभु का बार बार जबरदस्ती है कि आप प्रभु जी आप क्लास दो, तो इसलिए मुझे थोड़े समय में क्लास में प्रिपेयर किया। तो सनातन गोस्वामी पाद जब वृंदावन धाम में रह रहे थे, तो उस समय उनका जीवन में एक संकल्प ले रखे थे, उनका बहुत बड़ा व्रत था, रोज जो वृंदावन राधा मदन मोहन मंदिर से निकलते थे, वृंदावन होकर वो गिरी गोवर्धन का परिक्रमा लगाते थे, सुबह उठ कर के उनका एक तपस्या था, व्रत उनका यही था, तो निकलते करते थे। और जब उम्र हो गया था, तो समय चैतन्य महाप्रभु बोले, सनातन और आपको इस प्रकार का इतना बड़ी उम्र में आपको इस प्रकार का कड़ी तपस्या करना कोई ज़रूरत नहीं है। तो वहाँ पर सनातन गोस्वामी पाद जी बोले, हाँ प्रभु, हाँ ये तो मेरा आधार है, यही मेरा आध्यात्मिक पोषण है, तो इसको ये मेरा व्रत छोड़कर मैं कैसे, हाँ। तो चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी पाद जी का इस प्रकार का बढ़ता हुआ उम्र को सहन नहीं कर पाए और उनको एक गोवर्धन जी का शिला दिए थे, दे करके बोले कि सनातन आप ये शिला लेकर राधा दामोदर मंदिर में रखकर यदि चार बार परिक्रमा लगाओगे, तो आपको वृंदावन ना गोवर्धन का परिक्रमा का फल मिल जाएगा। तभी से सनातन गोस्वामी पाद जी ने तो चैतन्य महाप्रभु के आदेश के अनुसार वो राधा दामोदर मंदिर में गोवर्धन जी का शिला रख कर चार को, आज भी ये रिवाज है, जब भक्त जाते हैं तो आज भी राधा दामोदर मंदिर के जो गोवर्धन रखा हुआ सनातन गोस्वामी के द्वारा जो रखा हुआ, तो गोवर्धन शिला का चार बार मंदिर का परिक्रमा करके वो गोवर्धन का परिक्रमा का फल प्राप्त होते हैं, ये आचार्यों का तपस्या, ये आचार्यों का मेहनत का ये कमाई है। आज वो कमा करके जो धन, जो तपस्या का पूंजीभूत धन आज संभाल के रखे हैं, ये वैदिक साहित्य का अक्षय बन के रहा और आज के भक्त पीढ़ियों को आज आध्यात्मिक पोषण हमें देता है। आज हमें बहुत ही कम परिश्रम में, बहुत ही कम मेहनत में आज ये धन को हमें अधिकारी, धन का अधिकारी हमें बनने के लिए आचार्यों का तपस्या का द्वारा हमें आज प्राप्त हो रही है ये बात को। और ये बात भी हरिदास ठाकुर जी के जीवन में भी दिखा गया है। हरिदास ठाकुर जी को जगन्नाथ जी के सेवक लोग मना कर दिए थे कि तुम मिलच्छ हो, जवन हो, तुम यहाँ पे तुम्हारा स्पर्श होने मात्र से ही हमें अपवित्र हो जाएंगे। और हरिदास ठाकुर भी अपने को अति संयत करके रखे थे, वो आए नहीं अंतिम समय तक, वो जगन्नाथ के सिंहद्वार तक आए नहीं, कभी नहीं आए। उनको मन में बहुत बड़ा ये अपने को न्यून समझ के रखे थे, नहीं जगन्नाथ जी के सेवक लोग के ऊपर मेरा छाया स्पर्श न करे, ये बात को रखते हुए हरिदास ठाकुर जी नित्य सिद्ध बकुल जो चैतन्य महाप्रभु के दिया गया स्थान को कभी छोड़े नहीं थे, वहीं पर रह करके भजन में सिद्धि अपने तपस्या कर रहे थे। और उनके तपस्या इस प्रकार का प्रबल था, इस प्रकार का जोर था, भले वो कभी आए नहीं, यदि हरिदास ठाकुर ना चैतन्य महाप्रभु हरिदास ठाकुर जी को जगन्नाथ जी के दर्शन के लिए लेके जाते, तो कौन किसका हिम्मत था उनको रोकने के लिए। लेकिन जो सामाजिक मतलब परंपरा का नियम है, सामाजिक समाज के नियम है, वो लांघे नहीं। हरिदास ठाकुर जी वहीं पर रुक गए और उनके तपस्या इतने जोर था, इतने प्रबल था उनके तपस्या। भले वो आए नहीं जगन्नाथ जी को दर्शन करने के लिए, उनके तपस्या के द्वारा स्वयं जगन्नाथ जी रोज जाते थे उनको दर्शन देने के लिए। उनके तपस्या ऐसा था, और महानिर्माल्य के साथ उनके तपस्या ऐसा आकर्षित कर रहा था चैतन्य महाप्रभु को। पहले चैतन्य महाप्रभु का ये नित्य कर्म था, नित्य काम था ये। पहले जगन्नाथ जी के दर्शन लेंगे, बाद में हरिदास ठाकुर जी को दर्शन देने के लिए खुद ही जाते थे। हाँ, और जगन्नाथ जी का महाप्रसाद के साथ, हाँ, ये कैसे संभव है? हाँ, तपोदिव्यं, ये तपस्या के द्वारा ही ये संभव है, यही बात को यहाँ पर कहा जाता है। तो और ये बात को भी हमें देखते हैं, जब जगन्नाथपुरी में संन्यास व्रत लेकर के चैतन्य महाप्रभु रहने लगे, और नित्यानंद प्रभु सहन नहीं कर पाते थे उनके विरह। अपने जो प्रभु है, हमेशा ये दिखा जाता है, राम में लक्ष्मण, कृष्ण में बलराम, वो हमेशा लगे रहते हैं। और ये बात भी जब देखे हैं, चैतन्य महाप्रभु जो बाल्य लीला कर रहे थे सची के आंगन में, बड़े ही छोटे थे, निमाई पंडित के रूप में लीला, बाल मुकुंद लीला कर रहे थे। और उस समय एक बार सची माता कोई घर के काम में लगी हुई थी, और उस समय अपने छोटे निमाई ऐसे अपने घुटने के सहारा के द्वारा वो आंगन में खेल रहे थे, और अचानक एक बहुत बड़ा भयंकर सर्प आ गया। हाँ, देखिए ये जो सेवा प्रवृत्ति है, ये जो अपने प्रभु की सुख देने की जो स्वेच्छा से जो कष्ट उठाना है, ये भक्त अवतार जो भगवान के प्रकाश विग्रह कृपा विग्रह से हमें शिक्षा, खुद ही वो शिक्षा देते हैं भक्तों को, स्वयं अनंत। और ऐसे निमाई पंडित सची के आंगन में खेल रहे थे, अचानक भयंकर सर्प आ गया, और आ गया, और अपने के कुंडली मार करके अपने फणा को उठा करके ऐसे ही खड़ा हो गया, जैसे अनंत भगवान विष्णु को अपने गोद में रह करके सुख की आस्वादन करते हैं, ठीक उसी प्रकार ये जो सर्प आ गया आकर के कुंडली मार करके बैठ करके अपना फणा को ऊपर उठा के रख दिया। और ये जो बाल मुकुंद बाल निमाई वो गए अपने घुटने के सहारे के द्वारा अपने पेट में घुसड़ के गए, और जा करके इस सर्प के ऊपर उठ गए, और अनंत जैसे अनंत सया में जैसे विष्णु शयन करते हैं, ठीक उसी प्रकार बाल निमाई निमाई पंडित तो वो जा करके उस सर्प के गोद में सो गए। जो सो रहे थे, और प्रभु भी अपने भृत्यों के सेवा लेकर के खिलखिल होकर हंस रहे थे, और ये अनंत भी अपने गोद में प्रभु को लेकर के भी तो वो भी बड़े आनंद अनुभव कर रहे थे। और ये यही बात को एक बार ये दर्प को चूर्ण किए थे भगवान चैतन्य महाप्रभु, जब बड़े ही उन्मत्त होते थे चैतन्य प्रेम में जो पागलपन दिखा रहे थे, तो एक बार ऐसे वो गिर पड़े थे, और चैतन्य महाप्रभु अपने गोद में नित्यानंद प्रभु को लेकर के बैठे हुए थे। ठीक उसी समय गदाधर पंडित जी बाहर आकर के देखें, आज ये नित्यानंद का जो भृत्य सेवा का जो अहंकार है, जो भृत्य सेवा का जो दर्प है, आज चूर्ण हुआ। जो सेसा ही अनंत हमेशा अपने प्रभु को अपने गोद में लेकर सेवा करने के लिए भाव बनाए रखता है, आज नित्यानंद आज ये अद्भुत है, आज ये परस्पर विरोध है। आज नित्यानंद प्रभु चैतन्य महाप्रभु के गोद में आज उनका दर्प चूर्ण हुआ। हाँ, ये बात तो दिखाया जाता है चैतन्य महाप्रभु की लीला में। और जब चैतन्य नित्यानंद प्रभु संभाल नहीं पाते थे अपनों को, और चैतन्य महाप्रभु संन्यास लेकर जब जगन्नाथपुरी में रहने लगे, वो हमेशा ही निकल जाते थे, हमेशा चले जाते थे चैतन्य महाप्रभु को मिलने के लिए। और जब जाते थे तो चैतन्य महाप्रभु एक ही बात कहते थे, मैं तो यहाँ पर संन्यास लेकर के आएगा, सची माता को कौन देखेगा, सची माता को कौन राह देगा, उनको कौन संभालेगा। और नवदीप वासियों का आध्यात्मिक भरोसा कौन रहेगा, मैं तो यहाँ पर संन्यास लेकर के यहाँ आया हूँ, लेकिन आप यदि मेरे पास आओगे तो फिर वो लोगों को कौन देखेगा, नवदीप भक्तों को कौन आश्वासना देगा। तो मेरा ये आदेश है, आप नवदीप का प्रचार का भार लो, नवदीप का दायित्व तो आप लो। ये आदेश था नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर को चैतन्य महाप्रभु का। और तो प्रभु के आदेश लेकर नित्यानंद प्रभु जब नवदीप में प्रचार कर रहे थे, एक बार पूछ दिए चैतन्य, और ज़्यादा करके उस श्रीवास आंगन को संकीर्तन आंदोलन का पृष्ठभूमि के रूप में चुन लिए थे। और संकीर्तन आंदोलन प्राय लगातार श्रीवास के अंगल में ही शुरू होकर के सारा पृथ्वी में पहुंच गया था, फैल गया था। ये आंदोलन श्रीवास के अंगल से शुरू होकर सारा पृथ्वी में फैल गया। और यही श्रीवास के आंगन को ही नित्यानंद प्रभु चैतन्य महाप्रभु बड़े ही हृदय के रूप में माने हुए थे। और एक बार पूछ दिए चैतन्य महाप्रभु कि श्रीवास, आप ब्राह्मण पंडित हो, आप ये भिखारियों को क्यों आपके घर में रखते हो? आप जानते हो आपके ये मर्यादा के ऊपर, आपका मान सम्मान के ऊपर बहुत बड़ा आँच है। ये भिखारियों को आपके घर से निकाल दो, बाहर कर दो। वहाँ पर चैतन्य महाप्रभु के ये कहने से नित्यानंद श्रीवास प्रभु कहते हैं श्रीवास चैतन्य महाप्रभु को, हे प्रभु, जे तुम्हारा भजे एक ही दिन ऐसा, जे आपको जो एक दिन के लिए भजन करता है वो व्यक्ति मेरे प्राण से भी प्रिय है। श्रीवास पंडित जी कहते हैं, हे प्रभु, जो एक दिन के लिए गौर उपासना करता है, गौर भजन करता है, ये नित्यानंद तो छोड़ो, हाँ, जो एक दिन के लिए आपका उपासना, आपका तपस्या अपने जीवन में स्वीकार कर लेता है, ये व्यक्ति मेरे प्राण से भी प्रिय है। और ये नित्यानंद जब यदि हाथ में शराब का बोतल ले और मुस्लिम घर में जाके मुस्लिम घर से भी विवाह भी कर ले, फिर भी मेरे हृदय में उनके चरित्र के प्रति कोई प्रकार का दुर्भावना उत्पन्न नहीं होगा। और नित्यानंद के लिए मेरा जाति जाए, मेरा प्राण जाए, मेरा धन जाए, फिर भी मैं नित्यानंद को त्याग नहीं सकता। तो जैसे ही श्रीवास पंडित के मुख से चैतन्य महाप्रभु इस प्रकार का सुने, तुरंत चैतन्य महाप्रभु क्या कहा श्रीवास पंडित, ये हुंकार करके गर्जन करने कर लगे और कहने लगे, हे श्रीवास, आप ही एकमात्र व्यक्ति हो जो नित्यानंद का जो गुप्त तत्व है आप ही समझे हो, आप ही जानते हो। तो मैं नित्यानंद को आपके हाथ में समर्पण किया कर रहा हूँ, आप उनका जत्न लो। इस प्रकार भले समय आए, लक्ष्मी को आवश्यक हो वो सड़क में कटोरा लेकर के भिक्षा मांगना पड़े, लेकिन तुम्हारे पर मैं आज इतने संतुष्ट हूँ, मैं आपको ये वरदान देता हूँ, आपके घर में कोई प्रकार अभाव दारिद्र की दिखाई नहीं पड़ेगा। ये बात चैतन्य महाप्रभु ने श्रीवास पंडित जी को कह दिया। और उसके साथ साथ मैं आपको ये भी वरदान देता हूँ, तुम्हारे घर में बिल्ली कुत्ते भी मेरे प्रति अखंड भक्ति प्राप्त करेंगे। श्रीवास पंडित जी को चैतन्य महाप्रभु का ये आदेश था। तो इसी प्रकार ये जो मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ, ये तपस्या का जीवन हमें स्वयं तपस्या अवतार, भक्त अवतार, करुणा विग्रह की जो बलराम तत्व है वो हमें ये मनुष्य जीवन किस प्रकार तपस्या में लगाना है, ये बात को हमें अपने निजी आचरण के द्वारा सिखाते हैं। जैसे ही हमें तपस्या करेंगे, भले हमें भगवत दर्शन के योग्य नहीं है, प्रभुपाद जी भी ये बात कहते हैं, मैं एक बार भी बताया था, प्रभुपाद जब अमेरिका में प्रचार कर रहे थे तो हिप्पियों ने कहा कि प्रभुपाद, हमारा कोई योग्यता नहीं है वैकुंठ पहुँचने के लिए, लेकिन भगवत संगी संघस्य प्रभुपाद जी यहाँ पर जैसे ऐसे कहें तो प्रभुपाद जी ने न ये बात को भागवत में ही बताया जाता है, भगवत संगी संघस्य, जैसे भगवान के संग करने वाले व्यक्तियों के साथ हमारे संग होती है तो तुरंत हमारे हृदय में जो अनादि जीवनों के जो हमें अनर्थ को लेकर बैठे हैं, जो अनर्थ उस प्रकार जल करके भस्म हो जाती है जिस प्रकार आग के आग में एक सूखा घास। और यही बात को भी मैं क्या कह रहा था, हाँ, प्रभुपाद जब प्रचार कर रहे थे अमेरिका में तो हिप्पियों ने कहा कि प्रभुपाद, हमें इतने ऐसे ऐसे कर्म कर लिए, इतने ऐसे ऐसे घिनौने कर्म कर लिए, किंतु हमारा हिम्मत नहीं होती है भगवान के पास पहुंचना। लेकिन प्रभुपाद जी ने वो जवाब में कहे थे, मुझे मालूम है, मुझे पता है तुम्हारा कोई, तुम लोगों का कोई योग्यता नहीं है। और इसीलिए प्रभुपाद जी ने राधा लंडनेश्वर को छोड़ने के पहले राधा लंडनेश्वर को प्रार्थना कर रहे थे, हे प्रभु ये लोगों का दोष नहीं देखना, क्योंकि वो लोगों को कुछ पता नहीं, हिप्पियों को कुछ भी पता नहीं है, मैं जा रहा हूँ लेकिन ये लोगों का दायित्व तो आपके ऊपर छोड़ के जा रहा हूँ। आप राधा लंडनेश्वर को प्रभुपाद जी प्रार्थना कर रहे थे कि आप वो लोगों का दोष नहीं देखना। तो एक है, तो वो हिप्पी लोग कह रहे थे कि हमारा कोई योग्यता नहीं है वैकुंठ में पहुँचने के लिए, तो प्रभुपाद जी ने जवाब में कहे थे, मुझे पता है लेकिन मुझे जो आप पकड़ रखोगे हाँ, तो मैं बैकुंठ का जो वीजा है, जो टिकट है, मैं आपके हाथ में दे दूंगा, बैकुंठ में बैकुंठ में आपको घुसा के लेके चले जाऊंगा। तो ये एक हमारे में तपस्या नहीं हो पाती है, क्योंकि कलयुग में तपस्या करना बहुत मुश्किल है। शरीर साथ नहीं है, मन साथ नहीं है, कुछ साथ नहीं देते हैं। इस प्रकार का अवस्था में इतने भगवान को प्राप्त करना, ये कोई सामान्य तपस्या नहीं है। भगवान को प्राप्त करना, वैकुंठ में पहुंचना, ये ऐसे 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 खाली 16 माला जप कर लेंगे, 4 नियम पालन कर लेंगे, चले जाएंगे भगवत धाम, ये इतना आसान नहीं है। ऐसा होता तो सारे को सारे भगवत धाम चले जाते हैं, 16 माला करके, 4 नियम पालन करके सारे लोग चले जाते हैं। फिर यहाँ पर भी आशा दिखती है। हाँ, प्रभुपाद जी एक संतों ने जो कहा, ये कैसे झूठ हो सकता है, सही नहीं है, लेकिन फिर सही है, सही आसान नहीं है। भगवान का धाम जाना 16 माला 4 नियम बस, बहुत लोग तो करते हैं, कहाँ जाते हैं, लेकिन इसमें भी आशा दिखती है प्रभुपाद जी की वजह से। प्रभुपाद जी ने जो ये बताया, यदि हमें 16 माला करेंगे तो ना, ये बात आती है ना, यदि हमें 16 माला प्रभुपाद जी ने दिया, लेकिन 16 माला करेंगे तो ना जाएंगे, 4 नियम पालन करेंगे तो ना जाएंगे, होता है क्या 16 माला होता है क्या? होता है तो हाँ, कैसे भी खाली पूरा करना है, पहुंचना है, और बाउंड्री को बाउंड्री के पास पहुंचना है, जो गुरु के हमें कहे हैं तो वहां पर हमें पहुंचना है। यदि 16 माला होगा और 4 नियम होगा तो जाएंगे, लेकिन होता नहीं है, तपस्या नहीं होती है। हाँ, 16 माला होती नहीं है, जिसकी होती होते उनका वो जीवन धन्य है। हाँ, जिसका नहीं होता है तो फिर आशा बहुत कम है। तो यहाँ पर यही बात को शिक्षा दिया जाता है ये आज की कथा के द्वारा, कि संयम रखो, इस शरीर को लगाओ तपस्या में, तपस्या के द्वारा जब शुद्ध हो जाएगा, दग्ध किल विषया दग्ध, जब तपस्या लेंगे हमारा जीवन में, वो दग्ध हो जाएगा। ज्ञान अग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात कुरुते अर्जुन, हे अर्जुन, ये दिव्य सेवा, ये दिव्य ज्ञान के द्वारा, ज्ञान अग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात कुरुते अर्जुन, हे अर्जुन, वो भस्म हो जाएगा। इस प्रकार का तपस्या हमें लेंगे, संयमता रक्षा करेंगे, और भगवान को जानने के लिए प्रयास करेंगे, हमारे जो पाप है, ये भक्ति का जो प्रोसेस है, इतने शक्तिशाली है, वो सब जला के भस्म कर देगा। दग्ध अभिचे तो शूद्राचार्य भजते माम अनन्य भाग साधु रेव, वो साधु बन जाएगा, चाहे वो कितने बड़े भी कैसे भी व्यक्ति हो, किंतु यदि हमें लिए हैं महत कृपा बिना, यदि हमें महत कृपा को आश्रय करते हैं, और ये भक्ति का जो उपाय दिया गया है उनमें हमें हमारा मति को लगाए रखते हैं, तो निश्चित रूप से हमें जीवन के सफलता को प्राप्त करेंगे। तो यहीं पर ये एक आशा है। तो यहाँ पर यही बात को कहा जाता है, कृत संकल्प भविष्य में अनुरूतम, कैसे झूठा हुआ, आप लोग इतने संयमी हो, तपस्वी हो, और ब्रह्म को जानने वाले व्यक्ति हो, फिर आपके वचन, आपका कार्य कैसे झूठा हुआ, ये बात बहुत बड़ा संशय होती है। तो ये हमारा यदि कुछ होती है, ये हमारा भजन की जो कमी है, ये हमारे में कमी है। जब भक्ति में भक्ति कमी होती है तो सारे बातें व्यर्थ हो जाती है, फिर वो हमारे जीवन का उधार तो छोड़ो, दूसरे भी की हमें कुछ कल्याण नहीं कर पाते। तो ये बात को हमें शिक्षा के रूप में दिया जाता है, जीवन में तपस्या स्वीकार करना चाहिए जो हमारे शक्ति के अनुसार, और मन को संयम करना चाहिए। वास्तविक तपस्या मन को नियंत्रण, बहुत बड़े बड़े कार्य करते हैं, यदि मन साथ नहीं है, चेतना हमारा महत्वपूर्ण है, चेतना, जो चेतना हमारा नहीं है, मन नहीं है भगवान में, तो बड़े बड़े कार्य करके भी ये तपस्या नहीं है, ये भोग हो जाएगा। तपस्या के नाम पे, सेवा के नाम में हम भोग करेंगे, भले छोटे से सेवा करूं, लेकिन वो शुद्ध होना चाहिए, मन लगे रह लग करके सेवा करना चाहिए। बहुत कुछ करूं, बहुत बड़ा बड़ा काम करूं, लेकिन यदि उसके भीतर और कपटता, दीनता के भीतर यदि कपटता रहे, दीनता दिखाएंगे लेकिन उसके भीतर यदि कपटता भरे रखें, तो फिर वो तपस्या के जगह पे और कुछ आ जाएगा, उस जगह पे और कुछ आ जाएगा। इसीलिए तो ये बात को यहाँ पर कहा जाता है। तो इस प्रकार तपस्या जीवन को स्वीकार करना चाहिए, जो करेंगे तो निश्चित रूप से हमारा जीवन में सिद्धि प्राप्त होगा, यही बात को हमें शिक्षा दिया जाता है। यदि निश्चित रूप से करेंगे तो निश्चित होगा। कुछ दिशा हमें दिख जाएगा। तो यहीं पर यही बात को कहा जाता है। तो इस श्लोक के लिए मैं ज़्यादा कोई तैयारी नहीं किया था, तो प्रभु जी का बार बार कहने से, मैं क्लास नहीं देना था, लेकिन प्रभु जी के बार बार कहने से मैंने चलो ठीक है मैं दे देता हूँ। तो फिर मैं एक क्लास दिया, तो जो थोड़े समय को कम समय के भीतर में वो श्लोकों के विषय समझा तो बताया, तो कृपा करके आप जो अच्छे भक्ति के पोषण हो, जो सार चीज है, तो उनको लोगे तो कृतज्ञ रहूंगा। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की। समय नहीं है, समय प्रश्न तो नहीं होगा।
वंदेहं श्री गुरु श्री युता पदकमलं श्री गुरुं